harparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
आधुनिक युग, एशिया में साम्राज्यवादी संघर्ष,
भारत पर अंग्रेजों की विजय।
सन 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को परास्त करके नादिर शाह ने मुगलों की रही सही रीढ़ भी तोड़ दी। 15वीं शताब्दी में टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। छोटे छोटे देशी राजाओं के आपसी कलह के कारण भारत का राजनीतिक ढांचा डगमगाने लगा था, जिसका लाभ पाश्चात्य देशों ने उठाया। सर्वप्रथम पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस लेकर भारत आए। भोले भाले राजाओं की स्थिति भांप कर क्रॉस जमीन पर रख दिया और व्यापार बढ़ाने तथा सैन्यकरण करने के लिए जुट गए। फिर क्रमशः हॉलैंड के डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ने भारत में व्यापारिक उपनिवेश बनाए। व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। अंग्रेजों की जीत रॉबर्ट क्लाइव जैसे दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ कुशल सेनापतियों के कारण हुई। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। बंगाल पर अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हुई। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह तक पूरा भारत कंपनी के शासन के नीचे आ गया। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटेन के सरकार ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन लेकर स्वयं को भारत का शासक घोषित किया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण की, जो पहले मुगल सम्राट धारण करते थे। भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। भारत में व्याप्त कुरीतियां, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, बलि प्रथा और अशिक्षा को दूर करने के लिए समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि ने प्रयास किए। विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए विलियम बेंटिक का योगदान भी महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने भारतीय बाजारों पर अपना कब्जा कर लिया। यातायात की व्यवस्था, रेल, तार और डाक की व्यवस्था प्रारंभ की। अंग्रेज व्यापारियों को आयात निर्यात करों से मुक्त कर दिया गया। चाय, कॉफी और नील की खेती का काम करने वाले मालिकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की घोषणा की गई। भारतीयों पर अत्याचार अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। जनमत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रेस कानून बना दिया गया। भारतीयों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। सार्वजनिक जीवन में अंग्रेज भारतीयों से अभद्र व्यवहार करते थे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। इन्हीं कारणों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय जनता के आर्थिक शोषण एवं उन पर अत्याचार करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे चमकदार हीरा कहा जाता था। स्मरणीय बिंदु, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने साम्राज्ञी की पदवी धारण की। चीन की सभ्यता। प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में ही फलती फूलती हैं। चीन में भी सभ्यता का विकास ह्वांगहो नदी के क्षेत्र में हुआ। इस नदी में बाढ़ बहुत आती है। नदी अपनी धारा बदल लेती है, परिणाम स्वरूप खेत खलिहान घर द्वार सब में पानी भर जाता है। चीन का शोक ह्वांग को ही कहते हैं। इसकी तुलना भारत की दामोदर नदी से की जाती है, क्योंकि दामोदर नदी में भी बहुत बाढ़ें आती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे प्राचीन चीनी सभ्यता शाड़ वंश के राजाओं ने 1765 ईस्वी पूर्व से 1122 ईस्वी तक अर्थात 14वीं शताब्दी में उच्च स्तर की संस्कृति का विकास किया। 6वीं शताब्दी से चीन पर साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम हुआ। 19वीं शताब्दी तक के लंबे समय के दौरान चीन की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई। ईसा की 7वीं शताब्दी के आरंभ से चीन पर ताड़ राजवंश का शासन रहा। धर्म के मामले में उदार नीति अपनाई गई और वाणिज्य व्यापार को उन्नत बनाया गया। मंगोलों के शासन के बाद चीन में लगभग 300 वर्षों तक मिड वंश के राजाओं ने राज किया। चीन में साम्राज्यवाद का प्रसार। इंग्लैंड की निगाह प्रारंभ से चीन पर लगी हुई थी। ब्रिटिश लोगों ने चीनियों को पहले अफीम की लत डाली, कालांतर में चार की लत डाली। चीन पर जापान रूस और फ्रांस की दृष्टि थी। जापान और रूस के पास होने के कारण चीन का राजनैतिक आर्थिक और सामरिक महत्व अधिक था। चीन के कच्चे माल के विशाल भंडार पर उनकी दृष्टि थी। अतः यूरोपीय देशों में चीन पर अधिकार जमाने की होड़ लगी थी। प्राचीन चीन में सामाजिक वर्ग। चीन में राजा के बाद कुलीन पुरुषों का स्थान था। राजा उन्हें भूमि देता था और उसके बदले में वे लड़ाइयों में राजा की सहायता करते थे। व्यापारी और दस्तकार तीसरे वर्ग में आते थे। जनसंख्या का बड़ा भाग किसानों का था। निम्न श्रेणी दासों की थी और दासों की तरह युद्ध बंदी होते थे। योद्धा कांसे का शिरस्राण और धातु का कवच पहनते थे। कांसे की कटार और कुल्हाड़ियों, धनुष और धातु की नोक वाले बाण वहां पर मिले हैं। किसानों से उपज का 2/3 भाग ले लिया जाता था। यदि फसल खराब हो जाती तो हजारों किसान भूखे मर जाते थे। कभी कभी किसान अपने राजा के क्रूर व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। चीन के धनी निवासी शानदार कोठियों में भोग विलास का जीवन बिताते थे। वे उंगलियों के नाखून बहुत बढ़ा लेते थे और उस पर चांदी के पत्थर चढ़वा देते थे। चीन में व्यवसाय कला और शिल्प। शाड़ साम्राज्य की उन्नति कृषि पर निर्भर थी। मुख्य रूप से ज्वार बाजरे की खेती होती थी। बाद में गेहूं और चावल की भी खेती करने लगे। चीनी लिपि को लिखने के लिए ब्रश कागज और रेशम के प्रयोग के कारण चित्रकला की काफी उन्नति हुई। बौद्ध धर्म यहाँ प्रचलित था। बौद्ध धर्म के प्रचार से मूर्तिकला को काफी प्रोत्साहन मिला। चीन का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म हो गया। कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक थे जिनके द्वारा नए धर्म की स्थापना से बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कम हुई। ताओ धर्म का चीन में महत्वपूर्ण स्थान था। राजाओं के मकबरे विस्तृत थे। चीनी वास्तुकला बौद्ध स्तूपों पर आधारित थे। चीन के निवासियों ने अनेक पैगोडा बनवाए। राजाओं के मकबरे का कमरा बहुत सुंदर ढंग से उत्कीर्ण लकड़ी से बनाया जाता था। विज्ञान के क्षेत्र में चीनियों की उपलब्धियां। मध्यकाल में चीन उन्नति के शिखर पर था। चीनी मानव उद्यम ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की। अत्यंत प्राचीन काल से चीन के निवासी चुंबक पत्थर के चुंबकीय गुणों को जानते थे। मध्ययुग में उन्होंने कुतुबनामा बनाने में इस ज्ञान का प्रयोग किया। इसमें पानी पर तैरती हुई मछली के आकार की लोहे की कील लगाई जाती थी जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती थी। चीनियों ने ज्योतिष यंत्रों और तांत्रिक घड़ियों का आविष्कार किया। वे लोहा तथा इस्पात को ढालने की क्रिया भी जान गए। चीनियों ने 10वीं शताब्दी में ही लोहे का झूलता हुआ पुल बना लिया। उनकी दूसरी उपलब्धि थी बारूद का आविष्कार। वे बारूद को अग्नि औषधि कहते थे और इसका प्रयोग आतिशबाजी में करते थे। 10वीं शताब्दी में ही बारूद का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले चीनियों ने ही छापने की कला का आविष्कार किया। चीनियों ने ही कागज के नोटों का प्रचलन शुरू किया। किसी देश में इसका प्रचलन नहीं था। प्रारंभिक दिनों में चीनी जो कुछ छापना चाहते थे उसे लकड़ी के चौखट पर खोद लेते थे, उन पर स्याही लगाकर उसके द्वारा जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती थी वे छाप लेते थे। बाद में 11वीं शताब्दी में वे अलग अलग अक्षरों को जिस रूप में चाहे लगाने लगे। पहले ये अक्षर पक्की मिट्टी के बनाए गए थे और फिर धातु के। इस आविष्कार के कारण अधिक पुस्तकों का छपना संभव हो गया। ज्ञान के प्रसार के लिए इस आविष्कार का उतना ही महत्व था जितना कि कागज के आविष्कार का। प्राचीन काल से इतिहास, गद्य और कविता संबंधी जो साहित्य लिखा गया वो समृद्ध हुआ था। व्यापार और वाणिज्य। दान वंश के राज्यकाल में चीन के विदेश व्यापार का विशेष महत्व था। चीनी वस्तुएं जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों और कागज की मांग देश भर में थी। चीन के बने चीनी मिट्टी के बर्तनों का स्थान विशेष था, जो कलात्मकता के लिए जगत प्रसिद्ध था। चीन का व्यापार वियतनाम, हिंदेशिया, भारत, मध्य एशिया, ईरान और वेजेंटाइन से था। ये मार्ग रेशम मार्ग कहलाता था। चीन मसाले, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत और बारीक कपड़े का आयात बड़ी मात्रा में करता था। देश का धन विदेश न जाए इसलिए सूर शासकों ने कागज के नोट चलाए। 15वीं शताब्दी के पश्चात मिडवंश के शासकों ने विदेश व्यापार को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने देशवासियों के स्वतंत्र रूप से विदेश जाने की अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी व्यापार कैंटन बंदरगाह से ही हो सकता था। विदेशों से संपर्क स्थापित करने पर प्रतिबंध लग जाने से चीन की उन्नति में बाधा पड़ी। चीनी लिपि विचार को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करती थी। चीनी लिपि ने एक कला का रूप ले लिया। सभी स्थानों पर उसी तकनीक को अपनाया गया। लेखक रेशम या बांस की पतली पट्टिकाओं पर तूलिका से लिखते थे। चीन का सौर चांद पंचांग। चीन का पंचांग सूर्य और चांद की स्थितियों की गणना पर आधारित था। महीने चंद्रमा पर आधारित थे और प्रत्येक महीने में 29 या 30 दिन होते थे। चीनियों ने इस बात पर गौर किया कि वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं। चीनी विद्वानों ने ज्योतिष के एक अन्य क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली थी। वे चंद्र ग्रहण की पूर्व सूचना ठीक ठीक दे सकते थे। गणित में चीनी लोग दशमलव प्रणाली का प्रयोग जानते थे, किंतु बहुत समय तक उन्हें शून्य का ज्ञान नहीं था। चीनी अंकों की पद्धति गुणा पर आधारित थी। यदि उन्हें 300 लिखना होता था तो वे 100 और 3 के अंक लिखते थे। चीनियों ने अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे जिनमें वेनसांग और फाहयान का नाम उल्लेखनीय है। भूकंप लेखी यंत्र का आविष्कार भी चीनियों ने किया। उन्हें मानव शरीर रचना विज्ञान का भी ज्ञान था। अनेक संक्रामक रोगों को पहचान सकते थे और प्रत्येक के लक्षण जानते थे। भोजन और स्वास्थ्य का संबंध भी उन्हें ज्ञात था। उल्लेखनीय है कि पतंग प्राचीन चीनी निवासियों का ही खिलौना था और चीनियों ने ही छतरी का आविष्कार किया।
स्मरणीय बिंदु। चीन में शांड साम्राज्य की उन्नति कृषि पर निर्भर थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को चीन भेजा। कन्फ्यूशियस और लाओत्स चीनी दार्शनिक थे। चीनियों ने ज्योतिष यंत्रों और यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार किया। चीनियों ने बारूद का आविष्कार किया। बारूद को अग्नि औषधि कहते थे। चीनियों ने सर्वप्रथम छापने की कला का आविष्कार किया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।